अथवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtotar Shri Srimad His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantra Srimad Bhagavatam Ki Anant Koti Vaishnavrinda Ki Nitai Gaura Premanande All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 7, Adhyaya 9. Adhyaya Shirshak Prahlad Dwara, Narsingh Dev Ko Prarthanao Se Shant Karna. Shlok Sankhya 24. Tasmadamustanubhritam aham ashishogna. Ayo Shriyam Vibhavam Aindriyam Avirinchanta Avirinchat Nichamite Vilulitan Uru Vikramanena Kalat Manopayanamam Nijabhritya Parshvam Tasmadamustano Britam Ahamashisho Agna Ayu Shriyam Vibhavam Aindriyam Avrinchaya Nechamite Vilulitan Uru Vikramanena Kalatmano Panaya Mam Nijabhritya Parshvam Tasmadamustanubhritam aham ashishogna Ayu Shriyam Vibhavam Aindriyam Avirinchayat Nechamite Vilulitan Uru Vikramena Kalatmano Panaya Mam Nijabhritya Parshvam Jabritya Pasam Tasmadamam Sanabritam Mahamashisha Nignya
Shishodhnya
माता जी, शब्दार्थ तस्मात, अतः, अमोहो, इन सारे ऐश्वर्यों तनुभृताम देहधारी जीवों के प्रसंग में अहम मैं आशीष अज्ञ, ऐसे आशीर्वाद के फल को भली भांति जानता हुआ आयु दीर्घायु श्रियम भौतिक ऐश्वर्य विभवम प्रभाव तथा यश ऐन्द्रियम इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन अविरिंचया ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चीटी तक ना नहीं इच्छामि चाहता हूं ते तुम्हारे द्वारा विलुलितान समाप्त किए जाने वाले रुविक्रमेण अत्यंत शक्तिशाली कालात्मना काल के स्वामी के रूप में उपनया कृपया ले चलें माम मुझको निज भृत्य पार्श्वम अपने अत्यंत आज्ञाकारी भक्त की संगति में अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद हे भगवान अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य योग शक्ति दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबों को नष्ट कर देते हैं अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता हे भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें तात्पर्य श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को आध्यात्म ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं से प्रहलाद महाराज जैसा अनुभव प्राप्त हो सकता है मनुष्य को चाहिए कि वह प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा यह सीखे कि सारा भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है यहां तक कि यह शरीर जिसके लिए हम अनेक इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है किंतु आत्मा शाश्वत है न हन्यते हन्यमाने शरीरे आत्मा शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा के सुख की चिंता करे इस शरीर के सुख के लिए नहीं यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं जैसा दीर्घायु वाला शरीर मिल भी जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगा अतः बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की ही चिंता करनी चाहिए मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे केबा यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थपेड़ों से बचाना चाहता है जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं तो उसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और कृष्ण को पूरी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः मनुष्य को चाहिए कि सच्चाई के साथ कृष्ण को समझे और ऐसा शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा ही संभव है इस प्रकार प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भौतिक ऐश्वर्य न प्रदान करके शुद्ध भक्त तथा दास के सानिध्य में रखें इस जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए महाजनो येना गता सपन्ता प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपदा को भोग करना नहीं चाहते थे अपितु वे भगवान के दास का दास बनना चाहते थे उन्होंने इस मोहमयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख के लिए सदा प्रयत्नशील है उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं, जिन्हें शास्त्रों में भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि कहा गया है। भुक्ति का अर्थ है श्रेष्ठ पद पर स्थित होना, यथा उच्च लोकों में देवताओं का पद, जहां मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से ऊपर परम ब्रह्म से एकाकार होने की इच्छा करना। सिद्धि योगियों जैसे कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां, अनिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि प्राप्त करना। ऐसे सारे लोग जो भुक्ति, मुक्ति या सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति के इच्छुक हैं, वे काल क्रम में दंडनीय हैं और वे पुनः भौतिक कार्यकलापों में लौट आते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सबों का तिरस्कार कर दिया। वे शुद्ध भक्त के निर्देशन में मात्र एक दास की भांति लगे रहना चाहते थे। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथांवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखांवितंस। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, पहले ही वाक्य में, कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कैसे समझ सकता है। भगवान की अनोखी लीला है, कुंती महारानी एक स्त्री है, बट उनके मुख से जो प्रार्थनाएं निकली वो वैरागियों के लिए है कि मुझे दुख चाहिए, मेरे सारे संबंध जो है वो काट दीजिए, मेरे जो आसक्तियां हैं ये सब वैरागियों के लिए है, और एक स्त्री के मुख से निकलवाया। और यहां पे भौतिक जो ये ऐश्वर्य है ये कितना तुच्छ है, ये एक 5 साल के छोटे बालक के मुख से निकलवाया। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं समाज में कि अभी तो हमने कुछ सुख भोगा नहीं है, आप तो वैरागी बन गए, आपने भोग लिया होगा, अभी वैराग ले लिया, जब हम सुख भोगेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद देखेंगे, जब शरीर में जान नहीं रहेगा तब देखेंगे कि वैराग लेना है क्या, भक्ति करना है क्या। तो यहां तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि कैसे, हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 अध्यायों से, ये जो भौतिक ऐश्वर्य है, ये सब इंद्रिय तृप्ति का जो साधन है ये तुच्छ है, और ये जीव को सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? दुख देगा, दुख देने का साधन है। तो कोई कह सकता है कि कैसे प्रहलाद महाराज को यह अनुभव हुआ? जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिदाय भगवान की। तो पूछ सकते हैं कोई कि कैसे प्रहलाद महाराज तो अभी 5 साल के बालक हैं, उनको इतना अनुभव कैसे हो गया? इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो दूसरों के जो क्रिया से अनुभव लेता है या शिक्षा से अनुभव लेता है। पिछले कुछ 2 श्लोक पहले, हाँ पिछले श्लोक में बताते हैं, उसका ही कनेक्शन इस श्लोक में, इसलिए शब्द जो श्लोक का चालू हुआ है तस्मात अत, तो कहीं से कुछ है कनेक्शन। तो पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह भगवान को कि मेरे पिताजी ने तो इतना तपस्या किया। हिरण्यकश्यप का उम्र कितना था? 36,000 साल तो उन्होंने तपस्या किया। उसके पहले भी उम्र था, उसके पहले वो जवान थे, शादी हो चुका था, फिर 36,000 साल तपस्या किया, फिर आए देवताओं को कंट्रोल किया, इतना राज किया, फिर प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। अब प्रहलाद महाराज की उम्र है सिर्फ 5 साल। तो ये बुद्धिमानी है प्रहलाद महाराज की कि वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने इतने साल जिए, इतना सब कुछ अनुभव किया, इतना कमाया। कितना कमाया? कोई व्यक्ति कमाता है 1 फ्लैट अपने जीवन में बंबई में, एक रूम का, 1 BHK भी आजकल बहुत है, 1 रूम किचन भी हो जाए तो कमा लिया, कुछ तो जीवन में करके गया मैं। और अगर 1 कोठी बना लिया तो बहुत है, 1 बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया तो क्या कहना, जन्मों जन्मों के लिए मेरा नाम जो है वो गाया जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, हमेशा के लिए नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कितना कमाया है? 1 रूम किचन नहीं, 1 ब्रह्मांड, पूरा 1 ब्रह्मांड उनका था, ब्रह्मा जी का लोक छोड़ के पूरे ब्रह्मांड पे उन्होंने कब्जा किया। तो प्रहलाद महाराज सोचे इतना मिला, इतना एक्सपीरियंस किया, इतना अनुभव किया है? और इतना इनका जो ऐश्वर्य था, सिर्फ भ्रिकुटी से देवताओं को जो है वश में कर लेते थे, भ्रिकुटी मात्र से देवता डर जाते थे। ऐसे हिरण्यकश्यप को आपने क्षण में, एक क्षण में नष्ट कर दिया। तो अपने पिता के अनुभव से प्रहलाद महाराज शिक्षा लिए। तो जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं ना नारद मुनि को कि पहले भोग तो करने दो बच्चों को, अभी तपस्या कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष की बात करेंगे। पर हम देखते हैं कि सारे संसार में इतने सारे जीव हैं जो भोग में लगे हैं, कुछ जीव हैं जिनको भोग मिल नहीं रहा है तो प्रयास में लगे पड़े हैं, कुछ जीव हैं जिनको भोग इतना मिल गया कि वो परेशान हो गए हैं, क्या करें इतने धन का समझ में नहीं आता। इसके लिए आप देखिए पूरे समाज में इतने सारे साधन हो गए हैं जहां पे अपना आप धन और अपना जो समय है वो नष्ट कर सकते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बहुत समय है और बहुत धन है। तो यहां पे प्रहलाद महाराज बता रहे इतना होने के बाद भी उनको कहां सुख मिला? वो तो नहीं मिला। हिरण्यकश्यप को तो मैंने देखा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप का तो जो राज्य था या उनका कार्यालय था, देखा है हमने कैसे चलाते थे, क्या हुआ। लेकिन यहां पे बोलते हैं ना कालात्मनोपनय, कालात्मा, आप काल के स्वामी हैं और उसी काल से आपने नष्ट कर दिया हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद महाराज यहां सीख रहे हैं, और दूसरा भी कारण है कि प्रहलाद महाराज छोटे से बालक हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे संस्था में भी बहुत सारे गृहस्थ हैं, तो छोटा बच्चा अगर कुछ कृष्ण के बारे में कहता है तो सब लोग सुनने लग जाते हैं। तो यहां पे प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं तो सब सुनने लग जाएंगे ध्यान से क्या कह रहे हैं छोटा सा बालक। तो इसीलिए भगवान के इस आशीर्वाद से उन्होंने इतना कह दिया। और प्रहलाद महाराज का इन प्रार्थनाओं से हमें पता पड़ता है कि कैसे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये सारे जो चीजें हैं ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख हैं, ये दोष हैं इस भौतिक संसार के, और क्या करना चाहिए इनके साथ, इनका दर्शन करना चाहिए, बार 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 स्मरण करना चाहिए इन दुखों का, इन दोषों का, भौतिक संसार के दोषों का जो है स्मरण करना चाहिए। क्यों, क्या हम बहुत वो पेसिमिस्टिक हैं क्या, सैडिस्ट, यानी कि बहुत नकारात्मक हो जाता है व्यक्ति, ऐसे नहीं है, क्योंकि साधक के लिए हम लोग अभी तो भाव स्तर पे नहीं है, प्रेम स्तर पे नहीं है, तो कृष्ण लीला का उतना आस्वादन तो नहीं कर पाते हैं, इसके लिए इसमें लीला तो है भागवतम में लेकिन शिक्षा ज्यादा है, प्रार्थना ज्यादा है, प्रार्थनाओं में ज्यादा शिक्षा है, और क्या है भौतिक संसार में कितना कष्ट है उसका वर्णन है। आप गजेंद्र का प्रार्थना देख लीजिए, प्रहलाद महाराज का, कुंती महारानी का, ब्रह्मा जी का 10वें स्कंद में, हम सोचते हैं 10वें स्कंद में पूरा लीला है, वहां पर भी शिक्षा है, भगवान शिक्षा देने के लिए तो अवतरित हुए हैं। तो ये शिक्षा जो है हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उससे हम सतर्क रहेंगे और इससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। भौतिकवादी लोग कहते हैं आप उन्हें बताइए कि कितना दुख है संसार, बोले कुछ नहीं स्वामी जी, ऐसा बात मत करो, ये मृत्यु की बात बार बार क्यों करते आप, तो ये सब बात मत करो। बड़े आश्चर्य की बात है, जो भक्त हैं वो हमेशा अपनी कक्षाओं में व्याख्या में इस भौतिक संसार के कष्टों का बात करते हैं, लेकिन सुखी रहते हैं, और भौतिकवादी लोग हमेशा सुख का बात करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। भक्त लोग तो सुखी रहते हैं ना, तो यहां पे ये देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो बद्ध जीव है वो दो प्रकार के भ्रम में है, भ्रम इल्यूजन, दो प्रकार के भ्रम में जी रहा है। जिस दिन ये भ्रम खत्म हो गया, या तो वो अपने आप को नष्ट कर देगा, खुदकुशी कर लेगा, या तो भक्त बन चुका है वो, तभी वो भ्रम नष्ट हो सकता है। कौन से दो भ्रम हैं, एक है आनंद भ्रम और एक वैकुंठ भ्रम। आनंद भ्रम ये सोचना कि संसार में मैं सुख प्राप्त कर लूंगा, यह आनंद भ्रम, यह भ्रम है ना आनंद का, संसार में सुख प्राप्त करने की इच्छा। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपनी शिक्षाओं में कि जितना हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करेंगे दुख बढ़ता जाएगा। आपको सुख चाहिए तो सबसे पहले इच्छाओं को छोड़ दीजिए, सुख प्राप्त करने का जो है वो छोड़ दीजिए, कार्य अपने आप सुख आएगा, संतुष्टि ही परम सुखम। तो आनंद ब्रह्म में जी रहे हैं लोग। और दूसरा क्या ब्रह्म है, वैकुंठ ब्रह्म। वैकुंठ ब्रह्म जो है कि ये जो आनंद आएगा, जो मुझे मिलेगा, वो शाश्वत रहेगा हमेशा, मैं भी शाश्वत रहूंगा और मेरा आनंद भी शाश्वत रहेगा, यह है वैकुंठ ब्रह्म। तो इसमें जीव फंसा हुआ, जिस दिन ये दो भ्रम टूट गए उसके, या तो भक्त बन चुका है या तो वो अपना शरीर नष्ट कर देगा, क्यों, जीने का कुछ है ही नहीं, निराशीर हो जाएगा, कोई आशा ही नहीं जीने का। तो इसके लिए जैसे कई बार हम सुनते हैं कि व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है, बोलता है डॉक्टर मुझे कुछ तो थोड़ा तो और समय दे दो, थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है आधा घंटा दे दो, क्या करोगे आधे घंटे में, आधे घंटे में मैं अपने पूरे बच्चों को बताऊंगा कहां से पैसा आना है, कहां पैसा भेजना है, कहां कहां पैसा छुपा के रखा है, सब बताना पड़ेगा ना डिटेल। ठीक है, आधा घंटा दिया, फिर भी बोलता है नहीं नहीं 5 मिनट और दे दो, थोड़ा सा और बचा है। ये जीने की इच्छा है कि हो सकता है इस 5 मिनट में मैं सुखी हो जाऊं, वो इच्छा उसको खींचती है। इसलिए कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सीरियस एक्सीडेंट होता है तो उसको बोलते हैं डरो मत तुम ठीक हो जाओगे, उसको इच्छा जगाते हैं। अगर वो हताश हो जाता है तो नहीं रिकवर कर पाता, तो उसको इच्छा जगाते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी श्लोक के एक लेक्चर दिया प्रभुपाद जी ने, उसमें कहते हैं कि हर व्यक्ति जीने की इच्छा करता है, हर व्यक्ति जीने की इच्छा करता है। इसीलिए आप किसी भी 80 साल के उम्र के व्यक्ति से पूछेंगे कितना उम्र है आपका, 65। अरे 65 के तो आप दिखते नहीं, ठीक है 70, इससे ज्यादा नहीं है? फिर आजकल तो ये तो प्रभुपाद के समय में था, अभी तो क्या है इतना कॉस्मेटिक सर्जरी, गाल लटक रहा है उसको ऊपर चिपका दो। तो शरीर के अंदर के तो पुर्जे जो हैं वो तो नहीं स्वस्थ हो रहे हैं ना, वो तो कमजोर हो रहे हैं, उनको तो और जल्दी हम लोग कमजोर कर रहे हैं बाहर का खा पी के। चलो ठीक है, आप सोचेंगे अंदर का एक एक पुर्जा, लीवर चेंज कर लिया, किडनी चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। अभी गुड़ाकेश आए थे पिछले हफ्ते लेक्चर दे रहे थे, तो उनका स्टोन का ऑपरेशन था, तो मैंने पूछा आप फिर 3 महीने बाद इंडिया आ रहे हैं, अफ्रीका में ही आप जा रहे हैं, वहीं फिर से और ऑपरेशन करा लीजिए। बोले वहां कोई नहीं कराता ऑपरेशन, बोले स्टोन के साथ तो किडनी निकाल देते हैं, यहाँ भरोसा है अपने भक्त हैं। तो ऐसा है, तो दूसरे को लगाने के लिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं जो जीव का आयु है वो तो निश्चित है, जिस दिन आयु खत्म, परमात्मा शरीर छोड़ के चले जाएंगे, आत्मा पीछे पीछे, बद्ध जीव है, मन बुद्धि अहंकार भी जाएगा और शरीर वहीं गिर जाएगा। हम तो कई बार देखते हैं कि आत्मा के रहते हुए कभी वो शुगर लेवल डाउन हो जाता है, चक्कर आ जाता है तो शरीर गिर जाता है, उस समय हम अपने शरीर को वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आत्मा निकल जाएगा तो कैसे जीवित करेंगे, जीवित होते हुए गिर जाता है शरीर। तो ये सब पे हमें बार बार स्मरण करना चाहिए, तब हम थोड़ा सा अच्छा साधना होगा, थोड़ा रहना चाहिए। और जब भौतिक संसार के इन कष्टों का चर्चा चल रहा है तो एक साधक को आनंद लेना चाहिए इसमें कि हम बच गए, कितने कष्ट हैं। अगर मन में है कि नहीं इतना भी नहीं है कष्ट, तो वो तकलीफ में आ जाएगा, आ सकती है। तो हम इस श्लोक में देखते हैं तस्मात, इसलिए, क्योंकि पीछे क्या बोले नरसिंह भगवान, बोले मांगो इसलिए। तो आपने तो मेरे पिता को इतना सारा होने के बाद भी खत्म कर दिया, तो मैं नहीं मांगूंगा, तो क्या मांगोगे, कुछ तो मांग लो। अच्छा क्यों नहीं मांगोगे, आगे बताएंगे, अगले श्लोक में जो होगा उसमें बताएंगे कि क्यों नहीं, पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं क्या क्या नहीं चाहिए मुझे। पहले बोलते हैं ये मेरा लिस्ट है, ये नहीं चाहिए, फिर लास्ट में एक बताते हैं निजभृत्य पार्श्वम, ये चाहिए। इसके लिए कहते हैं तस्माद अमु तनुभृताम अहम आशीषज्ञ, आशीषज्ञ ऐसे आशीर्वाद के फल को भलीभांति जानता हुआ, मैं जानता हूं ये जो भौतिक आशीर्वाद मिलेगा उसका क्या फल होगा वो मैं जानता हूं, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए, आयु, आयु नहीं चाहिए, क्यों, इतना आयु होने के बाद भी क्या मिला हिरण्यकश्यपु को, कुछ नहीं मिलता है इतना आयु से। फिर क्या, श्रेय, हम देखते हैं श्रियम, इतना धन दौलत है, इतना भौतिक ऐश्वर्य, फिर भी क्या होता है, दुखी रहता है जीव, संसार में धन की कमी नहीं है। आज एक रिसर्च हुआ था, तो एक जर्नलिस्ट भारत से गया लंदन, कुछ 10-15 साल पहले का रिसर्च है, और उन्होंने देखा कि चलो भारत में तो बहुत भिक्षुक हैं सिग्नल पे, देखते हैं कि विदेश में क्या होता है। तो वो लंदन पे एक सिग्नल पे खड़ा हो गया और भीख मांगने लगा, और एक दिन में सवेरे से शाम तक 80,000 रुपए मिले उसको, इतना भीख मिल गया। तो धन की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी भारत में एक दिन में 80,000 नहीं कमा पाएगा। तो धन की कमी नहीं है यहां पे। भारत में रिसर्च हुआ कि किस शहर में भिक्षुक लोग को ज्यादा आमदनी है और कितना आमदनी है। हैदराबाद 25,000 रुपए महीना। इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रहा है, भीख मांगने वाले को 25,000 रुपए महीना बिना टैक्स। ऐसा अभी तक टैक्स बना नहीं ना, तो धन की कमी नहीं है, तभी तो बांट रहे हैं लोग। अभी धन अर्जित करने में जीवन खत्म किया, शरीर खत्म किया, सुख प्राप्त करने के लिए, धन मिला नहीं तो क्या करेंगे? फिर कोई मिल जाएगा पंडित, बोलेगा धन बांटो, यज्ञ करो, धर्मशालाएं खोलो, कुआं खुदवाओ, पानी नहीं है पानी लेके आओ। तो फिर वो बांटने, जितना कमाया सुख के लिए, सुख मिला नहीं, अबे बांट रहे हैं, फिर भी सोच रहे सुख मिलेगा, तो बांटने के बाद भी सुख नहीं मिलता है। सुख है ही नहीं तो मिलेगा किधर से? सुख नहीं है। अब बंगाल में जाएंगे मायापुर के आसपास, वहां पे भक्त लोग बताते हैं कि 10-20 फीट नीचे खोदेंगे तो पानी चालू हो जाता है आना। एक भक्त बताया कि 4,000 रुपए में यहाँ पे बोर लग जाता है, बोरिंग सामान के साथ लेबर चार्जेस। क्यों? क्योंकि पानी है। अभी आप जाइए जोधपुर में, राजस्थान में 400 फीट नीचे खड्डा हो जाएगा, पानी नहीं निकलेगा। और उन लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे पता पड़ता है कहां पानी है। तो जहां पानी नहीं है वहां खुदाई करके कुछ मिलना नहीं है। इस संसार में सुख वैसे ही है, सुख है ही नहीं और जीव ढूंढ रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। तो भौतिक ऐश्वर्य से भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं विभवम। तो आयु मिल गई, अभी ऐश्वर्य मिल गया, अभी क्या चाहिए? विभवम, ये और सूक्ष्म हो गया मेरा प्रभाव तथा यश, यानी मेरा प्रभाव, मेरा कंट्रोल, मेरा नियंत्रण बहुत विस्तार होता जाए। जो भी व्यक्ति अपना नाम को बढ़ाना चाहता है वो ऐसा कुछ कार्य करते हैं। धन संपत्ति अर्जित करना, बांटना, ये क्या है? बांटने में उनका नाम हो रहा है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन उससे भी क्या मिलता है? उससे तो व्यक्ति और अधोगति में जाता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दशम स्कंद में, जब कृष्ण सत्यभामा के साथ भौमासुर का वध किए, तो भौमासुर का वध करके भूमि देवी आई और प्रार्थना की। भूमि देवी ने प्रार्थना किया और वो अदिति माता के कुंडल और वरुण का छत्री लेके और गए। अब माता अदिति को दिया स्वर्ग में जाके, वरुण देव को दिया। जाते जाते सत्यभामा बोले कि इधर अच्छा था उद्यान है, थोड़ा घूम लेते हैं चलो। फिर वहां पे एक पारिजात कल्प वृक्ष दिखा, तो सत्यभामा बोले इसको ले चलो, लेके चले। तो कृष्ण का प्रभाव क्या है? कोई और छोरी नहीं है। भौतिक आध्यात्मिक कितना जगत है, कितनी सृष्टि है, कोई और छोर नहीं, वो सारा भगवान के पेट में है। तो भगवान को किससे परमिशन लेना है? बोले इंद्र तो अपना ही आदमी है, और उसको तो जब मैं 7 साल का था तभी शिक्षा दे चुका हूं। भगवान 7 साल के थे, गोवर्धन उठाया था। अब इंद्र बोले ये तो बड़बोला बच्चा है, ये भगवान नहीं है। तो कृष्ण ने वहां पे सिखा दिया, प्रार्थना किए कि आप भगवान है, आप मेरे स्वामी है, मैं भटक गया। फिर जब भौमासुर सता रहा था तब इंद्र द्वारका गए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अपने सोने के मुकुट को भगवान के चरणों पे रखते हुए प्रणाम किया इंद्र कि हमें बचाइए, हम तकलीफ में हैं। वही इंद्र के उद्यान में गए, कृष्ण ने सोचा उठा लो, उठा लिया। जब सत्यभामा और कृष्ण पहुंचे तो इंद्र ने आसन पे बैठाया दोनों को और खूब से अच्छा से स्वागत किया। सची देवी ने आरती किया। अब जब ये वृक्ष उठा के चले, वही सची देवी इंद्र को बोलती है कि ये क्या चल रहा है, कोई आता है बाहर से, वृक्ष उठाता है चला जाता है, आप कुछ बोलते नहीं हो। अभी पहले तो थोड़ा हिचक गया ना, पता है, याद है, ज्यादा समय बीता नहीं है, गोवर्धन लीला को, तो फिर भी पत्नी के कहने पर गए और युद्ध कर बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, देखिए इन देवताओं को कितने तमोगुणी हैं। तमोगुणी बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। तमोगुण तो है, अंधकार तो है। वो भगवान जिनके बाद अभी आप जाके प्रणाम किए, प्रार्थना किए, उन्होंने आपको बचा लिया, आप तो अपनी तरफ से कुछ उपहार देना चाहिए ना, कि आपने हमारा इतना रक्षा किया उस असुर से, ये उपहार हम आपको अपनी तरफ से कुछ देना चाहते। कुछ नहीं दिए, भगवान ने अपनी इच्छा से कुछ ले लिया। उसमें भी इंद्र जो है वो क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? क्या धन कम हो जाएगा एक वृक्ष जाने से? क्या आयु कम हो जाएगी? क्या फर्क पड़ेगा? प्रभाव विभवम, मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। क्यों? क्या कहेंगे लोग इतिहास में कि मैं इंद्र होके, स्वर्ग का राजा होके, अपने वृक्ष को किसी को ले जाने दिया बिना मेरा आज्ञा के? तो ये यश इंद्र का कम हो जाएगा ये सोचते हुए युद्ध कर बैठा। तो अपना यश को बचाने के लिए, पहले तो उसको कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए और उसको बचाने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, विस्तारित करने के लिए और उसका रक्षा करने के लिए। जितना हम ऊपर जाते हैं भौतिक संसार में वृद्धि करते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो जो आगे बढ़ रहा है या कोई व्यापारी हो जो व्यापार में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत, फिर वहां पे रहने के लिए नंबर वन बने रहने के लिए बहुत मेहनत। तो एक तो पहुंचने के लिए मेहनत, फिर वहां बचाने के लिए मेहनत, तो संघर्ष तो लगा ही है ना। तो उसमें जो एक एंजाइटी, एक जो टेंशन है वो तो लगा हुआ है। तो वो मैं क्या करूंगा लेके, तो वो भी नहीं चाहिए। तो इंद्रियम, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन ले लो, सारे साधन देता हूं इंद्रिय तृप्ति के, बोले नहीं चाहिए। वो हमने चर्चा कर लिया, इंद्रिय तृप्ति किसी को मिला नहीं है, हा? और ये जो है ये क्षणभंगुर है, वो भी भ्रम है, तो वो भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अविरिंचयात, अविरिंचयात, ब्रह्मा से लेकर चीटी तक, इस सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर चीटी तक ये पूरा पूरा जो जीव अनुभव करता है, ये मुझे अनुभव है। 5 साल का बालक बोल रहा है कि ब्रह्मा से लेकर चीटी तक इनको क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो पूरा अनुभव मुझे है। कहां से मिला अनुभव? अपने गुरु से, नारद मुनि की शिक्षाओं से। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अनुभव, दूसरों के अनुभव से सीखता है। लोग बोलते हैं ना कि पहले हम अनुभव करेंगे, कितना कर पाएंगे? 100 साल की आयु में कितना अनुभव कर पाएंगे? हर क्षेत्र में तो अनुभव कर नहीं सकते। अभी भगवान ने किसी को सुंदर नहीं बनाया है तो वो सुंदर बनने का अनुभव कर ही नहीं सकता कभी। भगवान ने किसी को बल नहीं दिया है तो बलवान होने का, शक्तिशाली होने का अनुभव कर नहीं सकता। तो वैसे भी हम अनुभव कर नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति कहता है, हम प्रचार करने जाते हैं कि हमको अनुभव करने दीजिए, हम अनुभव करेंगे फिर देखेंगे, तो अनुभव तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। और यहां इस जगत का अनुभव कैसा है? जैसे एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है कंपनी में, किस चीज के लिए? नौकरी के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है उसके बायोडाटा में, रिज्यूमे में, कि 15 साल का अनुभव है, 15 इयर्स एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो पूछा कंपनी वाले ने, जो मैनेजर था इंटरव्यू लेने वाला, कि किस चीज में आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, किस चीज में अनुभव है? वो बोला नौकरी ढूंढने में, 15 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूं, यही अनुभव है। तो ये संसार का अनुभव ऐसा है, कुछ मिलना नहीं है तो फिर अनुभव करके क्या मिलेगा है? तो यहां पे बोलते वो भी नहीं चाहिए, ना इच्छामि, नहीं चाहिए। क्यों? विलुलितान, ये समाप्त हो जाते हैं, विलुलितान ये सारा चीज समाप्त हो जाएगा। किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव से। उरुविक्रमेणा, अत्यंत शक्तिशाली कैसा है काल? उरुविक्रमेणा, ये अत्यंत शक्तिशाली काल के प्रभाव से सब नष्ट होने वाला है। तब बोलते हैं क्या चाहिए? नरसिंहदेव पूछ सकते हैं, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नेति नेति बोल रहे हो, तो क्या चाहिए? तब बोलते हैं निज मृत्य पार्श्वम, मुझे आपके भक्तों का सानिध्य चाहिए। प्रभुपा जी लिखते हैं दासानुदास, गोपेर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास। और कैसा दास बनना है मुझे? निष्ठावान दास, कच्चा दास नहीं। वो क्या होगा? वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर घूमेगा, तो निष्ठावान दास बन जाए। कैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, स्वामी को नहीं छोड़ना है। भगवान ने चैतन्य चरितामृत में यही सिखाया कि कैसे भक्तों का दास बन के रहना हमको। उसमें फायदा भी है। जब भौमासुर को वध किया कृष्ण ने, तो भौमासुर का बेटा था, उसको भूमि देवी लेके आई, अपने पोते को। अभी भूमि देवी कौन है? भगवान की भक्त है। भौमासुर भगवान का ही पुत्र था। जब वराहदेव ने भूमि को बचाया था, तब भौमासुर वहीं से उत्पन्न हुआ था। लेकिन भूमि देवी अपने पोते को लेके आई और बोली कि आप इसको अपना रक्षा प्रदान कीजिए, संरक्षण में रखिए, क्योंकि भूमि देवी ने कहा वो भक्त है, तो भगवान ने तुरंत उसको रक्षा दे दिया। नहीं तो अभी तो पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था भगवान ने। तो जब भक्त हमारी याचना करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। यही एक जो है शॉर्टकट है भक्ति का, यही एक शॉर्टकट है। हम कभी भी भगवान को डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। उत्तम अधिकारी महाभागवत जो भक्त हैं, उनका भगवान से परस्पर संबंध है। तो भक्तों की दृष्टि जब हम पे पड़ेगी, हमारी सेवा से प्रभावित होके या हमारी सेवा भाव देख के अगर वो हम पे दया करेंगे, तब जो है भगवान हमारा केस को कंसीडर करेंगे, सोचेंगे। तब तक नहीं होगा। इसके लिए बोलते हैं निज भृत्य पार्श्वम, और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें। प्रार्थना यहां पे नहीं रोक रहे, और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। अभी आ तो गए हम प्रभुपाद जी के संपर्क में, लेकिन यहां पे आने के बाद निष्ठावान बनना है, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो सकता। अगर निष्ठा के स्तर पे नहीं आते हैं कि हम जो है ये भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद जी के चरणों में शरण लेते हुए जन्म जन्म जो है वो भक्ति करते रहेंगे। बाकी काफी सारी कथाएं हैं भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, हमारे पास समय नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं इस लेक्चर में कि इंग्लिश में बहुत अच्छा सुंदर बताया, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता हूं कि अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी जो असिस्टेंट होता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसका एक असिस्टेंट होता है, कंपाउंडर, कोई भी ऑफिसर है, अधिकारी है, उसका एक असिस्टेंट होता है। तो असिस्टेंट जो है अभी वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकता अपने आप से, वो क्या करता है, वो उस डॉक्टर के अंडर में रह के अपना कार्य करता है और वहां सीखता है, वहां सीखता है कैसे करना है। तो हम भी भक्तों के निर्देश अनुसार भक्ति कर सकते हैं। जैसे महाराज बता रहे थे हल्दर महाराज कि अभी तो हम भक्ति आभास में हैं, भक्तों के अंडर में रह के उनसे शिक्षा लेके हम भक्ति कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉट दैट इमीडिएटली आई बिकम वेरी एक्सपर्ट सर्वेंट, ऐसा नहीं कि मैं भक्ति में आ गया ना, अब तो मैं सेवक बन गया हूं ना, अब मैं भगवान का सेवा करूंगा, बाकी सब साइड हो जाओ। प्रभु जी कहते हैं नॉट दैट इमीडिएटली आई बिकम वेरी एक्सपर्ट सर्वेंट। देखिए दास होने में भी अहंकार आ सकता है ना, अब जाएंगे तो कोई बड़ा मंत्री होता है तो उनके बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं, उसमें एक होता है चीफ सेक्रेटरी, एक होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, इतने सारे सेक्रेटरी होते तो उनके भी नाम होते, तो उनको भी अहंकार, हम सेक्रेटरी हैं तो क्या हुआ, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो वो गर्व होना कि मैं भक्तों का दास हूं अच्छा है, लेकिन अहंकार होना कि मैं भक्तों का दास हूं, बड़ा दास हूं मैं, वो गड़बड़ है। वहां प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं अवर इंस्टीट्यूशन इज फॉर दैट पर्पस, हमारा जो ये संस्था है ये उसी के लिए बना हुआ है, दास दास दासानुदास बनने के लिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं दास 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 एंड 100 times, 100 बार दास, उसके बाद हम दास। एक उदाहरण देते हैं एक भक्त कि जब कैमरा, हम जो कैमरा संभालते हैं उनको पता होगा, जब कैमरे से कुछ फोटो खींचते हैं दूर का फोटो, तो फोटो खींचा लेकिन जितना लेंस आप डालेंगे कैमरे में, आप लेंस बढ़ाते जाइए, देखें ना लेंस कभी कभी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्यों, वो उतना हाई क्वालिटी जो दूर का भी होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको पास दिखेगा और क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए चांद पे देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज करते हैं, क्या होता है उसमें लेंस बढ़ते जाते हैं। तो हमारे और भगवान के बीच में जितना भक्त होंगे उतना हम भगवान के संपर्क में ज्यादा रहेंगे, उतना नजदीक रहेंगे हम लोग। ये लेंस का काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, तो उतना हमारा भगवान जो है, भगवान जो हमें उतना अपने नजदीक दिखेंगे। तो इसके लिए लेंस बढ़ाना चाहिए, भक्तों को बढ़ाना चाहिए, यही गुरु परंपरा। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ समबडी कम्स हियर द फ्री होटल, क्या सोच के, द फ्री होटल फ्री स्लीपिंग अकोमोडेशन, देन हिज कमिंग टू दिस एसोसिएशन इज यूजलेस। अगर कोई भक्त आता है, कोई व्यक्ति आता है कि चलो संस्था है अच्छा चले गए, लेकिन ये सोचते हुए कि यहां मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में सोना मिल रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसकी जो संगति है, वो संग लेने आया है, वो किसी काम का नहीं है, वो संग किसी काम का नहीं है। कैसा संग होना चाहिए, जो यहां सेवा कर रहा है उसके साथ, उसके अंडर में रहते हुए, उसका सेवा करते हुए, तब वो आप जो है भक्तों का संग, भक्ति का संग मिलेगा। ना कि हियर इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी कैन हैव फ्री होटल, फ्री लिविंग एंड फ्री सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये संस्था ऐसा नहीं है कि चलो फ्री में आ गए, फ्री में रहेंगे, खाएंगे, हा? और यहां भोग करेंगे, तो उनके लिए नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्पॉइल्ड, ये सारी संस्था खत्म हो जाएगी। ये इसी लेक्चर में, इसी श्लोक के लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिया है मेलबर्न में, उसमें बता रहे हैं ये सारा संस्था खत्म हो जाएगा अगर ऐसे लोग आएंगे तो, फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में भोग करना। प्रभुपाद जी फिर लिखते भी हैं बी केयरफुल ऑल द जीबीसीज, दे शुड बी केयरफुल दैट दिस मेंटेलिटी मे नॉट इंक्रीज। वो अपने अधिकारियों को, प्रभुपाद जी जो उनके सीनियर अधिकारी हैं उनको बता रहे हैं कि ये जो है हमें ध्यान रखना चाहिए है? हर साधक बहुत ही उत्सुक होना चाहिए भक्तों की सेवा करने के लिए। निज भृत्य भाषितम, तब हर प्रकार से यह संस्था और इसमें रहने वाले सारे भक्त जो है वो भक्ति में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। तो यह है निजभृत, इतना महत्वपूर्ण। तो काफी लेक्चर, काफी कथाएं हैं इसके ऊपर, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट?
वैकुंठ ब्रह्म,
वैकुंठ वो ब्रह्म है ना, वैकुंठ क्या है? शाश्वत है, वैकुंठ शाश्वत है। भौतिक व्याधि व्यक्ति इस अशाश्वत जगत में अपने सुख को शाश्वत मानता है, उसको दार्शनिकों ने वैकुंठ ब्रह्म बताया है। वो ब्रह्म में है आनंद ब्रह्म, मतलब कि मैं आनंद प्राप्त कर सकूंगा इस संसार में, तो ये आनंद ब्रह्म है। ये दो ब्रह्म है, आनंद मिलता नहीं यहां पे, दुकान में स्टॉक नहीं है। और कोई? हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद, एक प्रश्न है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि जितने लेंस होंगे उतना हमारा विजन क्लियर होगा, वैसे ही जितने भक्त होंगे हमारे साथ तो उतना हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पर ऐसा भी कहते हैं ना कि वी शुड एसोसिएट विथ फ्यू हु कैन गाइड अस इन अ राइट ट्रैक। तो इसको कैसे समझे, कितने ज्यादा भक्त होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली क्या
लेंस, क्या काम? इनका प्रश्न है कि बहुत सारे भक्त होने चाहिए, तो किस प्रकार के भक्त होने चाहिए? हम तो बहुत है ना, तो लेंस का काम क्या होता है, हमारी दृष्टि को विस्तारित करना। तो वो भक्त जो आपकी सेवा, आपकी साधना और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी श्रद्धा को बढ़ा सके, वही भक्त आपके और भगवान के बीच में होना चाहिए। अगर कोई भक्त है जो श्रद्धा खत्म कर रहा है आपका भी, तो उसको बीच में कभी नहीं रखने का। इसके लिए तो रूप गोस्वामी जी ने बोला है ना कि डिफरेंस वो क्या है, किस से आपको संग लेना है वो आपको देखना है। तो लेंस क्या करना चाहिए, आंख को बंद नहीं करना चाहिए ना, लेंस जो है वो विस्तार करना चाहिए दृष्टि का। तो वो भक्त जो आपकी श्रद्धा को बढ़ाए, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपकी साधना को बढ़ाए, वो आपके और भगवान के बीच में रहना चाहिए, वो हमारी बुद्धिमानी होनी चाहिए, तब कार्य होगा। नहीं तो अगर कांच की जगह, लेंस की जगह आप कुछ काला पर्दा डाल देंगे, तो जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद श्रद्धाहीन है, जिनकी श्रद्धा खत्म हो चुकी है या नहीं है, उनका संग करके हमारा भी श्रद्धा चला जाएगा। हरिदास प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, इस श्लोक में लिखा है कि जो आठ प्रकार की सिद्धियां हैं, आठ प्रकार की सिद्धियां हैं, जो अणिमा, लघिमा और महिमा और षष्ठी जो इत्यादि, जो हमारा भक्ति जो, और ये कौन सा सिद्धि है?
भक्ति कौन सा सिद्धि?
हाँ।
है भक्ति सिद्धि में नहीं आता ना, भक्ति से सिद्धि से ऊपर है ना, भक्ति सिद्धि कामी, ये सबको तो क्या बोला गया, अकल सकल अशांत। तो भक्ति में सिद्धि, भक्त को अपने आप सिद्धि मिल जाती है, लेकिन भक्ति एक सिद्धि नहीं है। आठ सिद्धियों में भक्ति नहीं आता।
नहीं, यदि ये सिद्धि नहीं है तले ये लोग क्यों ऐसे अणिमा लघिमा ये जो तंत्र मंत्र जो विद्या सु क्यों सिद्धि करते, प्राप्ति करते क्यों?
भक्ति नहीं करते, वो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं सिद्धि, क्योंकि उनकी काम इच्छा है, उनको भोग चाहिए, उनको ऐश्वर्य चाहिए। तो भगवान ने इस संसार को पूर्ण बनाया है, संसार को पूर्ण बनाया है। आपकी इच्छा भोग करने के, ठीक है, कोशिश कर लीजिए तो बढ़ेगा उस तरफ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। हाँ, भक्ति जो है वैसे सर्वोत्तम सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।